समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। एक नए दिन की नई सुबह में आकाशवाणी गोल्ड पर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे लेकर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और मेरे साथ हैं शगुन चोपड़ा। नमस्कार शगुन।
नमस्कार देवेंद्र, एंड वेलकम अलोंग लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क टू आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे। वेल, वी आर ऑफ टू अ गुड स्टार्ट, इन अदर वर्ड्स अ रेनी स्टार्ट दिस मॉर्निंग, एंड वी हैव अ लॉट इन स्टोर फॉर यू। एज ओवर द नेक्स्ट हाफ एन आवर वी विल ब्रिंग यू द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स, एज वेल एज सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस डे, दैट इज 24th of July। सो लेट्स बिगिन विद द हेडलाइंस फर्स्ट, शैल वी?
जी।
Finance Minister Nirmala Sitharaman presented the first budget of Narendra Modi government's third term. Presenting the Union Budget for 2024-25 in Lok Sabha, the Finance Minister said this budget is mainly focused on employment, skilling, MSMEs and middle class, as she announced the Prime Minister's package of five schemes and initiatives for youth. The package aims to facilitate employment, skilling and other opportunities for 4.1 crore youth over a five-year period with a central outlay of 2 lakh crore rupees. Presenting a detailed roadmap for pursuit of Viksit Bharat, the budget mentioned 9 priorities of the government, providing opportunities for all. Finance Minister has increased the standard deduction for salaried employees in income tax from 50,000 rupees to 75,000 rupees under new tax regime. Similarly, deduction on family pension for pensioners is enhanced from 15,000 rupees to 25,000 rupees. This will provide relief to about 4 crore salaried individuals and pensioners. The Finance Minister has reduced the corporate tax rate on foreign companies from 40 to 35% to attract foreign capital for our development needs. Vivad Se Vishwas Scheme 2024 has been proposed for resolution of certain income tax disputes pending in appeal. Government has simplified capital gains taxation. Short-term gains on certain financial assets shall henceforth attract a tax rate of 20%. Long-term gains on all financial and non-financial assets, on the other hand, will attract a tax rate of 12.5%. Mrs. Sitharaman has increased the limit of exemption of capital gains on certain financial assets to 1.25 lakh rupees per annum for the benefit of the lower and middle income classes. This year, the budget has made a provision of 1.52 lakh crore rupees for agriculture and allied sectors. The Finance Minister said in the next 2 years, 1 crore farmers across the country will be initiated into natural farming supported by certification and branding. Government will incentivize additional employment in manufacturing sector in first 4 years of employment. 30 lakh youth and their employer will get incentive in respect of their EPFO contribution.
सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा 2024 को रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही देशभर में सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आज से काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि उपलब्ध साक्ष्य प्रश्न पत्र के प्रणालीगत लीक होने का संकेत नहीं देते हैं और उनसे 5 मई को आयोजित परीक्षा की वैधता पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। पीठ ने कहा कि हमारा यह मानना है कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर नीट यूजी 2024 परीक्षा को रद्द करना न्यायोचित नहीं है। पीठ ने यह भी कहा कि वर्तमान वर्ष के लिए परीक्षा को रद्द करने से 20 लाख से अधिक विद्यार्थियों के लिए गंभीर परिणाम होंगे और प्रवेश कार्यक्रम में व्यवधान आएगा। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने नीट यूजी परीक्षा पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि आखिरकार सच्चाई की जीत हुई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि नीट घोटाले में शामिल दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
The National Jal Jeevan Mission has achieved a historic milestone providing tap water connections to 15 crore rural households across the country. The mission has showcased unprecedented speed and scale, increasing rural tap connection coverage from 3 crore in 2019 to 15 crore in a short span of 5 years. The mission was announced in 2019 with the aim to provide tap water supply to every rural home by 2024. In a post on social media, Jal Shakti Minister C.R. Patil said, "This milestone has not only given a gift of pure water to the countrymen, but also improved their quality of life. As on date, 8 states and 3 union territories have achieved 100% coverage."
ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी आज भारत की दो दिन की यात्रा पर आ रहे हैं। वे मुख्य रूप से व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी सुदृढ़ करने और लंबित भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत करेंगे। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की लेबर पार्टी की सत्ता में आने के बाद दोनों देशों के बीच ये पहली उच्चस्तरीय वार्ता होगी। श्री डेविड लैमी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे।
The death toll from 2 landslides in southern Ethiopia has jumped to 229 and could rise further as the search for survivors and casualties continue. Following heavy rain, a landslide buried people in Yeze Gufa district in southern Ethiopia on Sunday night, then a second one engulfed others who had gathered to help on Monday morning. Officials said 148 men and 81 women were among the victims. The number of deaths increased significantly when rescuers themselves became trapped. Prime Minister Abiy Ahmed expressed profound sorrow over the tragic loss of life. Seasonal rains caused such landslides in the East African country. Director of the U.S. Secret Service Kimberly Cheatle has resigned after facing scrutiny over security lapses related to the assassination attempt on former President Donald Trump at a Pennsylvania rally. Kimberly Cheatle informed her staff via email that she is stepping down as the director of the Secret Service. She was facing calls to resign amid dissatisfaction with her testimony at the House Oversight Committee's hearing yesterday.
मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान गुजरात, कोंकण और गोवा तथा महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है। गंगा के मैदानी भागों में भी अगले दो दिनों के दौरान बारिश होने की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिनों के दौरान वर्षा रूक रूक कर होने की संभावना जताई गई है।
On to sports news now. In Women Asia Cup cricket, India sealed their spot in the semi-finals with a dominating 82-run victory over Nepal in their final group match at Dambulla in Sri Lanka. Chasing the target of 179, Nepal managed to score just 96 runs in 20 overs. For India, Deepti Sharma clinched 3 wickets, while Radha Yadav and Arundhati Reddy took 2 wickets each. Early opting to bat first, Indian opener Shefali Verma with 81 off 48 balls and Dayalan Hemlata with 47 stitched together 122 runs partnership for the first wicket as India posted 178. Shefali Verma declared player of the match.
अमरनाथ गुफा की तीर्थयात्रा के लिए जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास आधार शिविर से 2,907 यात्रियों का एक और जत्था कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुआ। आज सुबह 103 वाहनों के काफिले में तीर्थयात्री आधार शिविर से रवाना हुए हैं। आज सवेरे में आप सुन रहे हैं अभी खबरें और इस समय हम आपको ले चलते हैं मेट्रोज की तरफ और चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद की क्या खबरें हैं शगुन आपके पास?
वेल राइट देवेंद्र, लेट्स बिगिन विद चेन्नई। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन हैज क्रिटिसाइज्ड द एनडीए गवर्नमेंट फॉर ड्राफ्टिंग अ बजट फेवरिंग देयर रूलिंग पार्टनर्स ऑफ बिहार एंड आंध्र प्रदेश। रिएक्टिंग टू द बजट ही अलेज्ड दैट द बजट अंडरमाइंड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बाय फेवरिंग सर्टेन स्टेट्स फॉर पॉलिटिकल गेन्स एंड निग्लेक्टिंग अदर्स इंक्लूडिंग तमिलनाडु। मिस्टर स्टालिन ऑल्सो सेड दैट द सेंटर हैड not allocated adequate relief funds to Tamil Nadu in the face of 2 disasters, despite submitting a memorandum requesting rupees 37,000 crore. More news from Chennai. The Tamil Nadu government stated that anyone wanting to build dwellings of up to 3,500 square feet in plots and up to 2,500 square feet will be approved on a self-certification basis. Chief Minister M.K. Stalin granted building permits to 10 recipients yesterday. Director of Town and Country Planning B. Kanesan stated that the project was implemented for the first time in Tamil Nadu and intends to assist economically disadvantaged and middle-class individuals. Moving on to Bengaluru, Karnataka leader of opposition in the Legislative Assembly, R. Ashok, has termed the union budget as excellent and outstanding and expressed confidence that its rollout will consolidate the progress made in the last 10 years and propel growth. In his reaction, Ashok said that the budget will go a long way in making India a $5 trillion economy by 2027. The Federation of Karnataka Chamber of Commerce and Industries, FKCCI, has welcomed the union budget. FKCCI President Ramesh Chandralhoti has described it as a document focused on bringing balance between reforms and populism. The focus on employee-linked incentives and production-linked incentives was also welcomed by FKCCI. This will boost employment opportunities for the first-time workers through EPFO. The thrust on skilling and industrial training will help achieve Viksit Bharat in a faster fashion. On to Hyderabad now. In Telangana, a unique model for TB-free municipalities under the project Swasthya Nagaram has been launched yesterday in Hyderabad. Under the collaborative initiative of State Tuberculosis Cell, municipal corporations of Pirazhigudam, Budupal and Pocharam in Mitchell, Malkajgiri district, Central TB Division, WHO India, USAID and others, the project aimed at achieving TB-free municipalities. The stakeholders informed that the innovative approach will demonstrate ending TB in an urban setting where social determinants have huge impact on increasing the TB burden with an approach of surveillance, prevention, complete cascade of quality TB care with engagement of multi-stakeholders. The model will be implemented in urban settings of Pirazhigudam, Budupal and Pocharam Municipal Corporation over a period of 3 years, aiming at bringing down one-third of TB incidents and bringing down TB-related mortality. Commissioner Health and Family Welfare and Managing Director, National Health Mission, R.V. Karnan, formally launched the Swasthya Nagaram project. And now, Devendra, what do we have from Delhi, Mumbai and Kolkata?
जी शगुन, जिस तरह से आपने भी कई खबरें बजट से जुड़ी हुई ली, उसी तरह की खबरें इस समय दिल्ली, मुंबई, कोलकाता से भी आ रही हैं, जो कि बजट पर प्रतिक्रिया हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 में दिल्ली पुलिस को 11,400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वित्त वर्ष से 6% कम है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए दिल्ली पुलिस को आवंटित बजट 11,932 करोड़ रुपए था, हालांकि बाद में आवंटन को संशोधित कर 12,128.83 करोड़ रुपए किया गया और शहर के पुलिस बल के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग नियमित खर्चों के साथ साथ दिल्ली पुलिस द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली विभिन्न योजनाओं जैसे कि एनसीआर क्षेत्र में आदर्श यातायात प्रणाली और संचार नेटवर्क विकसित करने के लिए किया जाएगा। संस्कृति मंत्रालय प्रसिद्ध सिने गायक मुकेश की 100वीं जयंती के अवसर पर उनके सम्मान में आज एक स्मारक डाक टिकट जारी करेगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रंग भवन में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गायक मुकेश की भारतीय संगीत पर अमित शाह को याद करते हुए ट्वीट किया कि उन्होंने अपनी गायकी से गीतों में मधुरता घोला और मुकेश को उनकी 100वीं जयंती पर मैं स्मरण कर रहा हूं। और मुंबई का रुख करते हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई ने बजट 2024-25 में समग्र आर्थिक विकास के साथ विकास पर मजबूत ध्यान केंद्रित करने के लिए सरकार को बधाई दी है। सीआईआई पश्चिमी क्षेत्र की अध्यक्ष सुश्री स्वाति सालगांवकर ने एक बयान में कहा कि 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को घटाकर जीडीपी का 4.9% करना और 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटे के स्तर को 4.5% से नीचे रखने का अनुमान वास्तव में सराहनीय है। रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद ने कहा है कि केंद्रीय बजट 2024 रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के लिए बड़ा बदलाव लाने वाला है। परिषद की सिफारिश के अनुसार सोना, चांदी और प्लेटिनम पर आयात शुल्क कम करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को धन्यवाद देते हुए परिषद के अध्यक्ष श्री विपुल शाह ने कहा कि सोने और चांदी पर आयात शुल्क घटाकर 6% और प्लेटिनम पर 6.4% करने से उद्योग को काफी बढ़ावा मिलेगा, जिससे उपभोक्ताओं के लिए सामर्थ्य बढ़ेगा और निर्माण क्षेत्र के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। और कोलकाता में भी उद्योग और व्यापार जगत ने केंद्रीय बजट का स्वागत किया है। इस बजट के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी और ये 2047 तक विकसित भारत की नींव रखेगा। भारतीय उद्योग परिसंघ के महानिदेशक श्री चंद्रजीत बंदोपाध्याय ने कहा कि बजट में जिस 11.1 लाख करोड़ रूपये के पूंजीगत व्यय की परिकल्पना की गई है, उससे अर्थव्यवस्था का विस्तार होगा। इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने भी केंद्रीय बजट का स्वागत किया है। ये भारत को आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनने में मदद करेगा। बंधन बैंक के सीईओ श्री चंद्रशेखर घोष ने कहा कि इस बजट के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकती है। आईटीसी के चेयरमैन और एमडी संजीव पुरी ने कहा है कि ये बजट भारतीय अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। महानगरों से जुड़ी खबरें अभी आपने सुनी और अब हम बात करते हैं महानगरों के मौसम की। आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में काफी दिनों के बाद बरसात हुई है और इसके चलते मौसम काफी बदल जाएगा और मैक्सिमम टेम्परेचर 34 डिग्री से ऊपर हो सकता है ना जाए क्योंकि बरसात होती रहेगी या बादल छाए रहेंगे। सुबह का तापमान 26 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था और मुंबई में अधिकतम तापमान 28 डिग्री रिकॉर्ड किया जा सकता है, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री तक जा सकता है तथा बादल छाए रहेंगे और भारी बारिश होने की संभावना यहां पर भी बनी हुई है। और कोलकाता में भी बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है, तापमान 31 और 26 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। शगुन, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में मौसम कैसा रहेगा?
राइट, चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई, द मिनिमम टेम्परेचर वाज 27 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 36 डिग्रीज। Bengaluru is expected to have generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 20 degrees Celsius and maximum will be around 27 degrees. Hyderabad is expected to have generally cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The temperature will hover between a minimum of 23 degrees and a maximum of 30 degrees Celsius.
और अब हम अपने श्रोताओं के लिए बात करेंगे इतिहास में दर्ज आज के दिन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की। आज ही के दिन 1793 में फ्रांस ने कॉपीराइट कानून बनाया था।
इन द ईयर 1932 रामकृष्ण मिशन सेवा प्रतिष्ठान वॉज एस्टैब्लिश फॉर द सर्विस ऑफ द सिक एंड ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज।
जी, और इससे पीछे चले तो 1823 में चिली में दास प्रथा समाप्त हुई थी और एक समय हम जानते हैं कि ये समाज में बहुत बड़ी बुराई रही है और एक एक करके तमाम देश जैसे ही लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ आगे बढ़े इस तरह की कुरीतियों को समाप्त करते गए। और 1870 में अमेरिका में पहली रेल सेवा की शुरूआत की गई थी।
In the year 1985, Prime Minister Rajiv Gandhi and Akali Dal Sant Harchand Singh Lungwal signed Punjab Accord, a peace contract ending the four-year-long agitation in Punjab.
S. Vijayalakshmi ne varsh 2000 mein aaj ke din, yani 24 July ke din hi, देश की पहली शतरंज ग्रैंडमास्टर महिला ग्रैंडमास्टर होने का गौरव हासिल किया था। 25 मार्च 1979 को जन्मी विजयलक्ष्मी ने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मैचों में अपना लोहा मनवाया है।
In 1992, Universal Poetry Foundation was established in Pune. In 1997, Bengali literator Mahasweta Devi won Raman Magsaysay Award for Journalism, Literature and Creative Communication Arts for her writings on indigenous communities. In 1997, Bharat Ratna was conferred on former interim Prime Minister Gulzarilal Nand and posthumously on freedom fighter Aruna Asif Ali.
जी, वर्ष 2005 में कोरियाई क्षेत्र को परमाणु हथियारों से मुक्त करने हेतु उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच आम सहमति बनी थी। तो ये थी कुछ इतिहास में दर्ज घटनाएं और अब आगे बढ़ते हैं और उन महान लोगों को याद करते हैं जिनकी आज जयंती, पुण्यतिथि या जन्मदिन है और जिनके कार्यों, विचारों ने समाज को प्रेरित, प्रभावित किया और करते रहेंगे। इस क्रम में सबसे पहले याद कर रहे हैं भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिक और इसरो के भूतपूर्व अध्यक्ष उडुपी रामचंद्र राव को जिनकी आज पुण्यतिथि है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के शासी परिषद के अध्यक्ष भी रहे। प्रोफेसर यूआर राव अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास और संचार तथा प्राकृतिक संसाधनों के सुदूर संवेदनों में व्यापक उपयोग की दिशा में मौलिक योगदान दिया। उनको भारत सरकार ने विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में उनके योगदान को सम्मान के रूप में 1976 में पद्म भूषण से तथा वर्ष 2017 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। और मशहूर भारतीय नृत्यांगना एवं कोरियोग्राफर अमला शंकर को भी याद कर रहे हैं। वो अपने समय के प्रसिद्ध नर्तक एवं कोरियोग्राफर उदय शंकर की पत्नी और दिग्गज सितार वादक पंडित रविशंकर की भाभी थीं। अमला शंकर ने उस दौर में नृत्य का प्रशिक्षण लिया जब महिलाओं के नाचने को समाज में निम्न दृष्टि से देखा जाता था। कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने 2011 में उन्हें बंग विभूषण से सम्मानित किया था। अमला शंकर ने साल 1948 में कल्पना फिल्म में मुख्य भूमिका भी निभाई। फिल्म की कहानी युवा नर्तकों के सपनों और नृत्य अकादमी पर आधारित थी। उन्हें 2012 में संगीत नाट्य अकादमी टैगोर रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
Well, today we're also remembering Maria Szymanowska. She was a Polish composer and one of the first professional virtuoso pianists of the 19th century. She toured extensively throughout Europe, especially in the 1820s, before settling permanently in St. Petersburg. Her compositions, largely piano pieces, songs and other small chamber works, as well as the first piano concert, Etudes and Nocturnes, in Poland, typify the style brilliant of the era preceding Frederick Chopin, and listeners, you are listening to her piece Polonaise in C major.
हिंदी और बांग्ला फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता उत्तम कुमार की भी आज पुण्यतिथि है। उत्तम कुमार का मूल नाम अरुण कुमार चटर्जी था। बंगाली सिनेमा में उत्तम कुमार ने एक अभिनेता के साथ साथ फिल्म निर्देशक, निर्माता, गायक और संगीतकार के रूप में भी अपना योगदान दिया। हिंदी सिनेमा में जिस तरह राज कपूर और नरगिस की जोड़ी को याद किया जाता है, बंगाली सिनेमा में उसी तरह से याद किए जाते हैं उत्तम कुमार और सुचित्रा सेन। उत्तम कुमार को बंगाली सिनेमा का महानायक कहा जाता है। बंगाली फिल्म नायक का एक संवाद आपको सुनवाते हैं।
वो सब पुरस्कार बुझी ना, 24 घंटा सब झमेला थे सिर्फ रेहाई चाहिए। प्लेने बुकिंग पाए एक ही भले ही
होता आगे डिसाइड कर ले तो एक अर्थ कूपे पा जो एन तो शेयर करते
हैं हमारे घंटा घुमे ओषद खाव और पड़े पड़े घुमब संगे के जा जाने माथा घुमाते बोए ग
Well, Uttam Kumar's career spanned 3 decades from the late 1940s until his death in 1980. He is regarded as one of the greatest actors in the history of Indian cinema. He appeared in over 200 films, including Agni Pariksha, Saptabdi, Pirsesh, Ankh, and many more. And for you, we have this beautiful track.
তবে কেমন হতো তুমি বলতো এই পথ যদি না শেষ হয় তবে কেমন হতো তুমি বলতো যদি পৃথিবীটা স্বপ্নের দেশ হয় তবে কেমন হতো তুমি বলতো
তুমি বলো
এই পথ যদি না শেষ হয়
तो इस महान अभिनेता पर फिल्माया गया ये बंगाली गीत अभी आपने सुना। और अब हम आपको सुनवाते हैं अमानुष फिल्म का एक हिंदी गाना जो उनकी पहचान भी है।
दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ है समोड़ा। एक भले मानुष को अमानुष बना के छोड़ा। सागर कितना मेरे पास है, मेरे जीवन में फिर भी प्यास है।
Well, today we are also remembering James Chadwick, English physicist. In 1932, he made a fundamental discovery in the domain of nuclear science. He proved the existence of neutrons, elementary particles devoid of any electrical charge. He has had many papers published on the topic of radioactivity and connected problems. With Lord Rutherford and C.D. Ellis, he is co-author of the book Radiations from Radioactive Substances.
Jee. आज पुण्यतिथि है भारत के मशहूर वैज्ञानिक और शिक्षाविद प्रोफेसर यशपाल की भी। वैज्ञानिक प्रतिभाओं को निखारने में उनका विशेष योगदान माना जाता है। देश के विज्ञान जगत में उनके उल्लेखनीय योगदानों के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। भारत के शिक्षा क्षेत्र में भी उनका योगदान रहा। प्रसिद्ध शिक्षाविद और वैज्ञानिक यशपाल का जन्म 26 नवम्बर 1926 को झंग में हुआ, जो पाकिस्तान में है। प्रोफेसर यशपाल को 1976 में पद्म भूषण तथा 2013 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। साल 2009 में विज्ञान को बढ़ावा देने और इसे लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाने की वजह से उन्हें यूनेस्को ने कलिंग सम्मान से सम्मानित किया था। आज ही के दिन 2017 में उनका निधन हुआ था। और अब याद करते हैं पन्नालाल घोष को, जो कि भारत के सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक थे। 24 जुलाई 1911 को पूर्वी बंगाल के बारिसाल में जन्मे पन्नालाल घोष का मूल नाम अमूल ज्योति घोष था। पन्नालाल घोष को बांसुरी का मसीहा, नई बांसुरी का जन्मदाता और भारतीय शास्त्रीय संगीत का युग पुरुष कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने लोकवाद्य बांसुरी को शास्त्रीय संगीत के रंग में ढालकर शास्त्रीय वाद्य यंत्र बना दिया। उन्होंने कई फिल्मों में भी बांसुरी बजाई है, जिसमें मुगले आजम, बसंत बहार, अनजान और आंदोलन जैसी कई प्रसिद्ध फिल्में शामिल हैं।
Today is the birth anniversary of Alexandre Dumas, the French novelist and playwright. His works have been translated into many languages and he is one of the most widely read French authors. Many of his historical novels of adventure were originally published as serials, including The Count of Monte Cristo, The Three Musketeers, 20 years after. His novels have been adapted into nearly 200 films. Prolific in several genres, he began his career by writing plays, which were successfully produced from the first. He wrote numerous magazine articles and travel books. In the 1840s, he founded the Théâtre Historique in Paris. And today it's also Jennifer Lopez's birthday, actress, dancer and musician. She began appearing in films in the late 1980s. She played leading roles in the films Selena, Anaconda and Out of Sight. She successfully ventured into the music industry with a debut album On the Sixth. And for you, we have this song, Alive, to listen to.
And though life can be strange, I can't be afraid. Searching to fill your soul, the strength to stand alone, the power of not knowing and letting go.
और अब बात करते हैं अपने दौर के लोकप्रिय अभिनेताओं में शुमार मनोज कुमार की। भारत कुमार उर्फ मनोज कुमार का आज जन्मदिन है। वैसे फिल्मी जीवन की शुरुआत से पहले इनका नाम हरिकिशन गिरी गोस्वामी था। अभिनेता के तौर पर मुख्य भूमिका में मनोज कुमार पहली बार नजर आए फिल्म कांच की गुड़िया में। इसके बाद मनोज कुमार ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मनोज कुमार ने एक्टर ही नहीं बल्कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के रूप में भी नाम कमाया। उनकी सबसे अधिक लोकप्रिय फिल्मों की अगर हम बात करें तो उनमें उपकार, रोटी कपड़ा और मकान, पूर्व पश्चिम और क्रांति शामिल हैं। उपकार का वो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं जो आज भी भारत के लोगों को भारत की पारंपरिक जड़ों से जोड़ने का एहसास दिलाता है।
मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती,
मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती।
Listeners, in the year 1992, he was honored with Padma Shri, and in 2016, he was honored with India's highest award in cinema, the Dada Saheb Phalke Award.
जी, मनोज कुमार को शहीद फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कहानीकार का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। मनोज कुमार ने शहीद फिल्म में सरदार भगत सिंह की भूमिका को जीकर उस किरदार के फिल्मी रूपांतरण को भी अमर बना दिया था। और चलते चलते हम आपको सुनवाते हैं पूर्व पश्चिम का फिल्म का वो गाना जो भारत के लोगों को भारतीयता और भारत की सशक्ति या भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा का एहसास दिलाता है।
मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ।
और इस खूबसूरत गीत के साथ ही दीजिए मुझे यानी देवेंद्र त्रिपाठी और शगुन चोपड़ा को आज सवेरे कार्यक्रम यही संपन्न करने की, लेकिन आप लगातार सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड।
वेल स्टे ट्यून फॉर समाचार प्रभात और हिंदी न्यूज बुलेटिन विच इज कमिंग अप नेक्स्ट फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर्ब डे।
नमस्कार।
कुछ और न